शिष्य को अपने गुरु की मूर्ति का सदा स्मरण रखना चाहिए। गुरु के पवित्र नाम का सदा जप करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में साधना का रहस्य निहित है। शिष्य को गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। गुरु के चरणामृत से संसार साकर सूख जाता है और मनुष्य आवश्यक आत्म संपत्ति प्राप्त कर सकता है। आप जब ध्यान में बैठे, तब अपने गुरु का एवं पूर्व के सब संतों का स्मरण करें, आपको उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे। शास्त्र एवं गुरु द्वारा निर्दिष्ट शुभ कर्म करें। शांति का मार्ग दिखाने के लिए गुरु अनिवार्य है। वाहे गुरु, यह गुरु नानक जी के अनुयायियों का गुरु मंत्र है। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो तो आपको गुरु की महत्ता का परिचय होगा। गुरु की पूजा करके सदा उनका स्मरण करो, इससे आपको सुख प्राप्त होगा। श्रवण माने गुरु के चरण कमलों में बैठकर वेद का श्रवण करना। गुरु सेवा महान शुद्धि करने वाली है। आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। जो उच्चतर ज्ञान चित्त में से निष्पन्न होता है, वह विचारों के रूप में नहीं अपितु शक्ति के रूप में होता है। वह ज्ञान गुरु शिष्य के प्रति सीधे सीधे संक्रमित करते हैं। ऐसे गुरु चित शक्ति के साथ एक रूप हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कारी गुरु इस जमाने में सचमुच बहुत दुर्लभ है। हम संत श्री लीला शाह जी महाराज का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे थे। संत श्री लीलाराम जी में से पूज्यपाद स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज कैसे बने, इस संदर्भ में अलग अलग प्रसंगों का उल्लेख आता है। उसमें से पूज्य स्वामी लीला शाह जी महाराज के कथन अनुसार सदगुरु स्वामी श्री केशवानंद जी महाराज ने उन्हें कहा था कि अब तू आध्यात्मिक मार्ग पर खूब आगे बढ़ चुका है, अतः तेरा नाम लीला राम नहीं लीला शाह रखते हैं। फिर वो उन्हें लीला शाह के नाम से ही बुलाते थे। श्री लीला राम जी जब बचपन में हंस निर्वाण आश्रम में स्वामी परमानंद के पास वेदांत के ग्रंथों का अध्ययन करते थे, तब उन्होंने लीला राम जी से कहा था, तू शाह है और शाह बनेगा। दूसरी एक अलौकिक घटना के कारण भी उनका नाम लीला शाह जी पड़ा था। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, उन दिनों में किसी जमीन की बाबत हिंदू और मुसलमानों में 30 वर्ष से झगड़ा चल रहा था। हिंदू कहते थे कि यहां हमारा झूलेलाल का मंदिर था और मुसलमान कहते थे कि यहां हमारी मस्जिद थी। उस समय अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू एवं मुसलमान भीतर ही भीतर लड़ते रहे। दोनों पक्ष कोर्ट में धक्के खा खा कर थक गए। आखिरकार दोनों पक्षों ने विचार किया कि यह धार्मिक जगह है, हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों के अग्रणी इकट्ठे हो, जिनके संत का प्रभाव ज्यादा हो उन्हीं की यह धार्मिक जमीन मानी जाएगी। उस जमीन पर एक नीम का वृक्ष था जिससे उस जमीन की सीमा निर्धारित होती थी। दोनों पक्षों ने अंत में ठहराव पास किया कि जिस पक्ष का कोई पीर फकीर उस स्थान पर अपना कोई विशेष बल, तेज या कोई चमत्कार दिखा देगा, उस पक्ष की वह जमीन होगी। तब हिंदू लोग पहुंचे पूज्य लीलाराम जी के पास एवं बोले, हमारे तो आप एकमात्र संत हैं। हमारे से जो कुछ हो सकता था वह सब हमने किया, किंतु निष्फल रहे। अब पूरे हिंदू समाज की इज्जत आपके हाथों में है। अब तो संत कहो या भगवान, आप ही हमारे एकमात्र आधार हो। संतों के पास अहंकार लेकर जाने वाले खाली हाथ ही लौटते हैं, किंतु विनम्र एवं श्रद्धालु लोग शरणागति के भाव से जाते हैं तो संत की करुणा कुछ देने के लिए जल्दी बरस पड़ती है। आए हुए लोगों की प्रार्थना सुनकर पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी लीलाराम जी महाराज उस स्थान पर जाकर जमीन पर दोनों घुटने के बीच सिर झुकाकर बैठ गए। विपक्ष के लोगों ने उन्हें इस प्रकार सहज एवं सरल रूप में बैठे देखा तो उन्हें हुआ कि यह साधु क्या करेगा, जीत तो हमारी ही होगी। पहले मुसलमान लोगों द्वारा आमंत्रित पीर फकीरों ने मंत्र तंत्र जादू टोने टोटके वगैरह किए, किंतु कुछ न हुआ। फिर पूज्य लीलाराम जी की बारी आई। पूज्य श्री लीलाराम जी बाहर से भले साधारण दिखते थे, किंतु उनके अंदर तो आत्मानंद हिलोरे ले रहा था। बाहर से कंगाल दिखते हुए भी भीतर से आत्ममस्ती में बैठे हुए संत जो बोल दे उसे होने से कौन टाल सकता है। उनके द्वारा कहे गए शब्दों को झेलने के लिए तो समग्र प्रकृति भी दासी बनकर निरंतर तैयार खड़ी रहती है। भगवान श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे रामचंद्र जी, त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो संत की आज्ञा का उल्लंघन कर सके और सुखी रह सके। श्री रामचरितमानस में भी भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, संत अवज्ञा सुनहु भवानी, जरही भवन अनाथ किनाई। जब लोगों ने पूज्य श्री लीलाराम जी से आग्रह किया तब उन्होंने अपने मस्तक को धीरे से उठाया। सामने ही नीम का वृक्ष खड़ा था, उसके ऊपर दृष्टि डालकर गर्जना करते हुए उन्होंने आदेश दिया, ए नीम, यहां क्या खड़ा है, जा वहां जाकर खड़ा रहे। बस ऐसा कहते ही नीम का पेड़ सर सर करता हुआ खिसकने लगा एवं दूर जाकर खड़ा हुआ। यह देखकर लोग तो अवाक रहे, आज तक ऐसा चमत्कार किसी ने नहीं देखा था। अब तो विपक्ष के लोग भी पूज्य श्री लीलाराम जी के पैरों पर गिर पड़े। वे समझ गए कि पूज्य लीलाराम जी कोई सिद्ध पुरुष है। उन्होंने हिंदुओं से कहा, ये केवल आपके ही पीर नहीं है परंतु हमारे आपके सभी के पीर है। आज से ही लीलाराम नहीं परंतु लीलाशाह है। तब से लोग उन्हें पूज्यपाद स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज के नाम से जानने लगे।